हेलो रीडर्स, इस तरह स्टोरी के बीच अलग से इसे पब्लिश करने के लिए सॉरी। आप सब यही चाहते थे कि अभिमन्यु और ऋषिका की कहानी खत्म ना हो, तो मैंने प्लॉट वापस सेट किया है। पब्लिश किए गए भाग 297 से एडिट करके मैंने ऋषिका और अभिमन्यु के सीन डाले हैं, आप उन्हें वापस पढ़ सकते हैं। पार्ट पहले से पब्लिश हो चुके थे तो उनमें उनका एक बार ज़्यादा रोल नहीं डाला है, लेकिन आगे कहानी बराबर रूप से चलेगी। उम्मीद है अब आप एक्टिव रहेंगे, पढ़कर समीक्षा करते रहें। बस इतना ही, कल से वापस कहानी कंटिन्यू हो जाएगी। उम्मीद है आप सब बिना समीक्षा किए नहीं जाएंगे और कहानी को उतना ही प्यार देंगे। अभिमान सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था, लेकिन जब उसने अपने दादा विक्रम और कजिन ब्रदर सिद्धांत की बातें सुनी तो उसका मूड अपसेट हो गया था। राजवंश फैमिली और अभिमान की बिल्कुल नहीं बनती थी। ऊपर से वो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते थे। ज्यादातर उनके प्लान्स उसकी मॉम निशा से जुड़े हुए होते थे, क्योंकि एक निशा ही थी जिसके चलते अभिमान थोड़ा मजबूर हो जाता था। विक्रम ने इस बार भी निशा के जरिए अभिमान को ब्लैकमेल करने का सोचा था। अभिमान ने शादी न करने के लिए उनके सामने पहले ही अपनी शादी के पेपर्स रख दिए थे, लेकिन अब वो निशा के जरिए उसे ब्लैकमेल करना चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को घर पर लेकर आए। उनकी बातें सुनने के बाद अभिमान तुरंत वहां से निकल गया। इस वक्त वो एआर एम्पायर्स के टॉप फ्लोर पर अपने केबिन में बैठा हुआ था। एआर एम्पायर्स भले ही नया हो, लेकिन किसी भी मामले में राजवंश एम्पायर से कम नहीं था। उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि 5 सालों में अभिमान उनके इतने पुराने और बड़े बिजनेस की साख हिला देगा। इस वक्त अभिमान के इर्द गिर्द उसका हेड सेक्रेटरी राघव और उसका दोस्त रचित खड़े हुए थे। अभिमान के हाथ में पंचिंग बॉल थी, जिसे वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए दबाए जा रहा था। राघव और रचित ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे दोनों बातचीत शुरू करने से डर रहे थे। राघव और रचित दोनों ही अभिमान के स्कूल टाइम से फ्रेंड थे। रचित ने हिम्मत करके अभिमान के आगे आकर कहा, देख, तेरे इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। बस इस बार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद हम राजवंश एम्पायर से काफी आगे निकल जाएंगे, फिर वो तुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। रचित को लगा कि उसकी बात अभिमान के गुस्से को थोड़ा कम कर देगी, लेकिन वो उसकी तरफ खा जाने वाली निगाहों से घूर कर देख रहा था। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, तेरा प्लान? ओ रियली? वैसे तो मैं भगवान में यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर वो किसी की दुआ कबूल करता है तो मैं यही कहूंगा कि वो किसी इंसान के आसपास हजारों दुश्मन देवे, लेकिन तुझ जैसा दोस्त नहीं। अच्छा ठीक है ना, हम इंसान हैं और कुछ छोटी मोटी गलतियां किसी भी इंसान से हो जाती हैं। तू भगवान में यकीन नहीं करता, लेकिन मैं तो करता हूँ। देखना, जल्दी हम अपनी मंजिल के करीब पहुँच जाएंगे, रचित ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। माहौल को हल्का करने के लिए रचित जबरदस्ती हंस रहा था। उसने अपने हाथ का पंच बनाया और उसे अभिमान की चेस्ट की तरफ ले जा रहा था। तभी अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा, डोंट यू डेयर टू टच मी। हाँ हाँ ठीक है, नहीं टच कर रहा मेरे बाप, रचित ने सिर हिलाकर कहा। वो समझ गया था कि उसकी किसी भी बात से अभिमान का गुस्सा आज शांत नहीं होने वाला था। ऊपर से उसने ये तक नहीं बताया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इतना भड़का हुआ था। रचित की ट्रिक कोई काम नहीं आई तो उसने राघव की तरफ इशारा किया। राघव भले उसका हेड सेक्रेटरी हो, लेकिन दोस्त भी था। रचित का स्वभाव जहां बच्चों जैसा चंचल था, वहीं राघव शांत स्वभाव का था। राघव ने गहरी सांस ली और अभिमान से बोला, सर, हमने यही सोचा था कि हम आपकी और आशिका सिंघानिया की शादी को इस्तेमाल करेंगे ताकि राजवंश फैमिली आपको शादी करने के लिए मजबूर न करे। मैंने आपका मैसेज देखा था, क्या आप सच में उनसे तलाक लेना चाहते हैं? आप जानते हैं ना कि ये आपके लिए नामुमकिन है। जैसे ही राघव की बात खत्म हुई, रचित ने उसकी तरफ हाथ जोड़कर चुप रहने का इशारा किया, लेकिन अभिमान ने उसके इशारे को देख लिया था। अभिमान अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथों को डेस्क पर रखकर रचित को घूरते हुए बोला, हाँ बेशक मैं कुछ भी कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इस इंसान की बदौलत मैं कहाँ और कितना फंस गया हूँ इसे तो अंदाजा तक नहीं है। अभी तक तो वो इस बारे में सिर्फ बात कर रहे थे कि वो मॉम को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अगर गलती से भी मॉम ने मुझे मेरी उस सो कॉल्ड वाइफ आशिका सिंघानिया को घर लाने को कह दिया तो न जाने मैं क्या करूंगा। अभिमान की बातों से उन्हें अंदाजा हो गया था कि अचानक उसने आशिका से तलाक लेने की बात क्यों कही, या फिर वो सुबह सुबह इतना परेशान क्यों था। रचित ने एक नजर अभिमान की तरफ देखी। उसका गुस्सा और उस पर फट पड़ता उससे पहले वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए खुद से बड़बड़ाकर बोला, इससे पहले कि ये अपने गुस्से के ज्वालामुखी में मुझे दफन कर दे और इसे ये याद आ जाए कि इसकी जिंदगी का ये तूफान मेरे ही कांड की वजह से मचा हुआ है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसका मूड सही करने के लिए मुझे नेक्स्ट प्लान पर जल्द से जल्द काम करना ही होगा।
रचित को दबे पांव दरवाजे की तरफ जाते देखकर अभिमान ने उसकी तरफ एक पेंसिल फेंकी और तेज आवाज में कहा, हाँ यही अच्छा होगा जो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जब भी तुम्हारी शक्ल देखता हूँ तो मेरे जख्मों पर नमक सा लगता है। रचित ने उसकी तरफ पलटकर इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट दी और फिर जल्दी से वहां से चला गया। वैसे भी वो दिखने में बहुत क्यूट सा था। लगभग 5 फुट 9 इंच हाइट, गहरे भूरे बाल जो उसके माथे पर बिखरे हुए थे। रचित एआर एम्पायर की टेक टीम में काम करता था। वहां आते ही वो अपने काम में लग गया था। राजवंश विला, गोवा। अभिमन्यु ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जबकि इशिका अभी तक बेड पर थी। नींद टूटने के बावजूद वो आंखें बंद करके लेटी थी। प्रेगनेंसी की वजह से उसे थोड़ा आलस आ रहा था। तैयार होने के बाद अभिमन्यु ने एक नजर इशिका की तरफ देखा। अचानक उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट उभर आई। अभिमन्यु इशिका के पास गया और उसने उसे अपनी बाहों में उठाया। इशिका ने जल्दी से आंखें खोली और बोली, क्या कर रहे हो अभिमन्यु? मुझे देर तक सोना है। भूलू है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तुमने ही तो बोला था रेस्ट करना है। अभिमन्यु उसे लेकर सीधे बाथरूम में बढ़ रहा था जबकि इशिका उसे रोकने के लिए अलग अलग बहाने बना रही थी। बाथरूम में आते ही अभिमन्यु उसे सीधे शावर रूम में गया और नीचे बैठाकर शावर चालू कर दिया था। इशिका मुंह बनाकर उसे घूर रही थी। अभिमन्यु हंसते हुए इशिका को देख रहा था। उसे इस तरह हंसते हुए शायद ही किसी ने देखा होगा। महंगा पड़ेगा मिस्टर राजवंश, इशिका ने उसे घूरते हुए कहा। कोई बात नहीं मिसेज राजवंश, तुमसे मिला हर सस्ता महंगा गिफ्ट मंजूर है मुझे। फिलहाल तुम इस शावर को एंजॉय करो क्योंकि इसके बाद तुम मेरे राजवंश एम्पायर चल रही हो। आई वॉन्ट दैट तुम एनी टाइम मेरी आंखों के सामने रहो, अभिमन्यु ने कंधे उचकाकर कहा। अभिमन्यु इशिका से बात करने में बिजी था तभी इशिका ने मौका देखकर हैंड शावर लेकर उसे अभिमन्यु के चेहरे की तरफ कर दिया था। ठीक है फिर, ये प्यारा सा गिफ्ट एक्सेप्ट कीजिए मिस्टर राजवंश। इशिका उठकर अभिमन्यु के पास आई और उसे पूरी तरह भिगाने लगी। इशिका अभिमन्यु को परेशान करने की नीयत से उसके पास आई थी लेकिन अभिमन्यु ने उसे पकड़ अपने करीब लिया था। अगले ही पल उसके होंठ इशिका के होंठों से लगे थे और वो उसे पेशेंटली किस कर रहा था। एक लंबे किस के बाद उन दोनों की सांस अटकने लगी थी। अभिमन्यु और इशिका के नाक आपस में टच हो रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? अभिमन्यु ने हाफती आवाज में पूछा। बस 1 घंटा दो। चेंज तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। जहां अभिमन्यु और इशिका में खुशियों भरा वक्त बीत रहा था तो वहीं दूसरी तरफ पहले में आशिका रिहान के साथ अपने कमरे में किसी प्रोजेक्ट के चलते लगी हुई थी। उसके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे।
आशिका जब भी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होती तो वो काम में पूरी तरह डूब जाया करती थी लेकिन आज उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। वो बार बार पानी पी रही थी। रिहान आशिका की हालत समझ सकता था। जब से आशिका घर पर लौटी थी उसके कुछ घंटे बाद ही 5-6 आदमी उसकी निगरानी के लिए उसके घर के आगे छोड़ दिए गए थे। ये किसने किया था वो अच्छे से जानती थी। रिहान को भी उसके कमरे में आने के लिए पीछे की खिड़की का रास्ता अपनाना पड़ा था वरना उसे भी अंदर नहीं घुसने दिया गया था। काम करते हुए रिहान उठकर आशिका के पास गया और बोला, ऐश तुम्हारे इस तरह टेंशन लेने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे अननोन हस्बैंड को ढूंढ लूंगा, हम उसे तलाक के लिए मना ही लेंगे। रिहान की बात सुनकर आशिका के हाथ कीबोर्ड पर चलते हुए रुक गए। उसने रिहान की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, और तुम्हें किसने कहा कि मुझे उससे तलाक चाहिए? नहीं रिहान, मैं उससे डिवोर्स नहीं ले सकती, चाहे वो मोटा लड़का किसी भी काम का क्यों ना हो। मैं ये नहीं भूल सकती कि उसी की वजह से आज मैं उस माफिया से बच पाई हूँ। ऐश की बात सुनकर रिहान चौंक गया था। वो जल्दी से बोला, अगर तुम्हें उससे तलाक नहीं चाहिए तो फिर उसे ढूंढना क्यों चाहती हो? ताकि उसे ये कह दूं कि वो अपनी आइडेंटिटी बदलकर कहीं अंडरग्राउंड हो जाए। जब तक मैं उसकी पत्नी हूँ वो माफिया मुझसे शादी नहीं कर सकता। मेरे पास बचने का एक ही तरीका है कि मैं हमेशा उसकी पत्नी बनकर रहूँ। वैसे भी मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा पति बने रहने के लिए मैं उस लड़की को पैसे तक दे सकती हूँ, आशिका ने साफ किया। रिहान सब समझ गया था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर ऐसा ही है तो तुम काम से बार बार डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रही हो? क्योंकि ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि आखिर मैंने उससे कब और किस तरह शादी की। फिलहाल तो मन नहीं कर रहा कि किसी दूर जगह पर वेकेशन पर चली जाऊं, लेकिन मुझे अपने उस अनजान पति को ढूंढने के लिए नहीं जाना है, आशिका ने जवाब दिया। फिर तो ऐसा समझ लो गॉड ने तुम्हारी सुन ली है, रिहान जल्दी से बोला और दौड़कर अपना टैबलेट लेकर आया। उसने आशिका को कुछ मेल्स दिखाते हुए कहा, ये देखो ये प्रोजेक्ट इंडिया से आया है और ये हमें कब से हायर करने के लिए मेल कर रहे हैं। ऐश तुम डार्क वेब की दुनिया की नंबर 1 हैकर हो, वे हमें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं, बस बदले में हमें उनकी राइवल कंपनी का डेटा चुराना है। मैंने वेकेशन पर जाने की बात कही है रिहान, जेल में नहीं। वैसे ही हैकिंग बहुत बदनाम है और लोग इसे इल्लीगल समझते हैं। सॉरी लेकिन मैं अनएथिकल हैकिंग नहीं करना चाहती। मत भूलो हम US में किसके लिए काम करते हैं, तो तुम इन्हें मना कर दो। आशिका ने प्रोजेक्ट को देखे बिना ही सीधा मना कर दिया था। हाँ, वो हैकिंग के जरिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी डेटा चोरी करना या कोई भी गैरकानूनी काम करने का नहीं सोचा था। रिहान ने भी आगे जिद नहीं की, क्योंकि वो आशिका को अच्छे से जानता था। वो अपना फैसला चुटकियों में ले लेती थी और फिर कोई भी उसका फैसला बदलवा नहीं सकता था। रिहान जवाब देने वाला ही था कि किसी ने अचानक आशिका के उस छोटे से घर के दरवाजे को बहुत जोर से झटके से खोला। आशिका ने जल्दी से रिहान को छिपने का इशारा किया। रिहान ने तेजी दिखाते हुए जल्दी से बेड के नीचे छिप गया था। आशिका ने देखा मिस्टर स्काई खुद उसके घर तक आए थे। उन्होंने आते ही कमरे में इधर उधर देखा। वो कमरा किसी कंप्यूटर लैब की तरह लग रहा था, ऊपर से काफी बिखरा हुआ भी था। तुम इस तरह की जगह पर क्यों रहती हो? तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, चलो सामान पैक करो, मेरे घर रहने आने वाली हो तुम, स्काई ने आशिका की तरफ देखकर अपना फैसला सुनाते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि आशिका को उससे किसी तरह का डर था, लेकिन जब मामले में उसकी मां तृप्ति इन्वॉल्व थी तो वो किसी भी हद तक जा सकती थी। यही वजह थी कि आशिका डायरेक्ट स्काई से किसी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। ऊपर से वो एक माफिया था। ये एक कंप्यूटर लैब है और मैं रात को इसकी देखभाल करने के लिए यहाँ सो जाती हूँ, बदले में मुझे किराया नहीं देना पड़ता। मैं यहाँ ठीक हूँ मिस्टर स्काई, आशिका ने धीमे लहजे में जवाब दिया। हाँ तो समझ लो कि आज से तुम्हारा चौकीदारी का काम खत्म हुआ। इससे पहले कि मेरे आदमी इस जगह को तहस महस करें, चुपचाप सामान बांधकर बाहर निकलो, स्काई ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आशिका ने उसे अपने साथ आने से मना कर दिया था। आशिका के लिए वो जगह उसकी जान जितनी ही प्यारी थी। वहां उसने बहुत सा डेटा कलेक्ट कर रखा था। एक हैकर होने के नाते डेटा रिकवर करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहती थी। आशिका ने गहरी सांस ली और कहा, रुकिए मिस्टर स्काई, मैं आपके साथ नहीं आ सकती क्योंकि मुझे डिवोर्स के लिए अपने पति के पास जाना होगा। स्काई ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया था। स्काई से बचने के लिए आशिका ने अपने पति के पास जाने का बहाना बना दिया था, लेकिन वो कहाँ रहता था आशिका पूरी तरह इस बात से अनजान थी। इस मुश्किल परिस्थिति से बचने के लिए आशिका ने पहली बार अपना फैसला बदलकर उस हैकिंग प्रोजेक्ट को करने का डिसीजन लिया। फिलहाल स्काई से बचने के लिए उसे इंडिया जाने का ही तरीका समझ आया। आशिका ने गहरी सांस ली और रिहान से कहा, जो आदमी हमें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है वो आगे भी काम आएगा। आई नो ये गलत है, लेकिन उसे प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दो रिहान। रिहान ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। उसने जल्दी से आशिका की तरफ से कन्फर्मेशन मेल भेज दिया था, जबकि दूसरी तरफ आशिका का कन्फर्मेशन किसी और को नहीं बल्कि रचित को मिला था, जिसे देखकर वो खुशी से झूम पड़ा था।